ஆயிரி ஆடும் நமோ உகச்சாயாடும் நமூலூயி சம்பசாஹூரம். மங்களம் பகவான் பீரோ மங்களம் கோதாரி மங்களம் குண்டு குந்தாத்யோ சேன தர்மோஸ்து மங்களம் தர்வ மங்கள மங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானாம் சர்வ தர்மானாம் சைனம் ஜெய தோஷா சைனம் ஜெய தோஷா சைனம் ஜெய புவனமே சார் பிரீத்து ராகவே ஞானதா சிவஸ்வரூப சிவகார் நமோ பிரயோக சமாளிக்கே. हम लोग ने अभी तक आश्रव की बहुत डिटेल में चर्चा कर ली है और उपयोग की भी हमने थोड़ी चर्चा करी थी. अभी तक के डिस्कशन में से कोई क्वेश्चन तो फिर हम आगे बढ़ते हैं.
अनुभव जी, लास्ट टाइम आपने आपने चित विवर्तन की थोड़ी बात की थी उपयोग की, तो वो थोड़ा सा ले लेंगे दोबारा. थोड़ा सा हेलो हेलो अनुभव जी, सचिन भाई.
हेलो.
खबर नहीं ड्रॉप हो गया लागे छे.
खबर नहीं एक्चुअली हूँ छे ने बाहर छू એટલે મારે કઈ હું જોઈ નથી શકતો ડેશબોર્ડ નહીં.
હેલો
આવી ગયા લાગે છે.
મારી આવાજ આ રહી હૈ?
હા હા
જી હા જી
हाँ, ओके,
अभी,
ओके,
अभी
ओके,
आ रही थी थोड़े दिन थोड़ी देर के लिए.
अच्छा अच्छा ओके.
हो गई थी.
हाँ, 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 नहीं, मुझे आप लोगों की तरफ से ठीक है. तो हाँ, तो हम लोग उपयोग का डिस्कशन फिर से शुरू करते हैं. उपयोग मतलब क्या? तो जीव द्रव्य के अंदर एक ज्ञान गुण है, एक दर्शन गुण है. हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है? राइट. ओके. तो जीव द्रव्य के अंदर एक ज्ञान गुण है, एक दर्शन गुण है. ये दोनों गुण चैतन्यता बनाए रखते हैं जीव द्रव्य में. इन दोनों गुणों से प्रतिभास होता है जीव को. जीव प्रतिभास करता है, मतलब प्रतिभास दो प्रकार का, एक सामान्य प्रतिभास और एक विशेष प्रतिभास. ठीक है. तो सामान्य प्रतिभास कराने का काम है दर्शन गुण का और विशेष प्रतिभास कराने का काम है ज्ञान गुण का. सो टू नो कॉमनली, लाइक यू नो, बस सिंपल जो महासत्ता का एक सामान्य रूप है विदाउट एनी भेद, कुछ हम डिटेलिंग में नहीं जानते हैं, तो वो होता है दर्शन. और जब हम उसमें विशेष जानने लगते हैं उसको बोलते हैं ज्ञान. अब ये चूंकि दोनों गुण है तो इनकी पर्याय निरंतर आत्मा में होती रहती है निरंतर. लेकिन आत्मा के पास जो उसका विशिष्ट लक्षण है वो है उपयोग, उपयोगो लक्षणम. तो जो आत्मा जानता है, संसारी आत्मा, तो संसारी आत्मा कर्म की अनादि से जो संतति चली आ रही है उसके कारण, उसके निमित्त से इसकी जो शक्ति है वो संकुचित रह गई है. मतलब ये इतना शक्तिशाली नहीं बचा. तो इस कारण ये आत्मा जानने की और देखने की तो इसमें प्रति समय पर्याय हो रही है, बट अब ये क्रमशः जानता है और थोड़ा थोड़ा जानता है. ठीक है. एक तो सिक्वेंशियली जानेगा कि मैंने पहले स्पर्शन इंद्री के विषय को जान लिया तो फिर रसना इंद्री का विषय, ऐसे करके क्रमशः. तो पहले दर्शन से जाना, फिर ज्ञान से, फिर ज्ञान में भी पहले एक इंद्रिय संबंधी, फिर दूसरी इंद्रिय संबंधी, ऐसे करके फिर मैंने इस साइड लेफ्ट में देख रहा हूँ, देन मुझे राइट में टर्न करना पड़ेगा तो मैं राइट का देख पाऊंगा, तो सिक्वेंशियली देख पाता है, और उसमें भी पूरा नहीं देख लेता, बहुत कुछ थोड़ा सा उसको ज्ञान में आता है, राइट? जैसे कि हम एक पढ़ रहे हैं तो हमको बुक को पढ़ने के लिए पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, और उसमें भी लाइन में भी हम उस समय सिर्फ एक वर्ड को ही देखेंगे, पूरी लाइन नहीं दिखेगी हमको। तो ऐसे सिक्वेंशली और थोड़ा थोड़ा ये चीज अनादि से जो इसके कर्म शक्ति है, दोनों व्यवहार से द्रव्य कर्म शक्ति के कारण और निश्चय से भाव कर्म के संयोग के कारण, निश्चय से भाव कर्म राइट, वो आत्मा की पर्याय, तो इसके कारण उसकी शक्ति संकुचित रह गई है, तो वह क्रिपल्ड हो गया, एकदम विकलांग बन गया है। ठीक है, ओके। तो अब ये जो उपयोग है, इस उपयोग के कारण अब सारा काम होगा, पूरी कहानी जो फैली है वो सिर्फ उपयोग के कारण फैली है। तो फर्स्ट हम इसमें समझें कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कि देखो पराधीनता का दुख कैसा है, कि लेट से हम जनरली सोचते हैं कि किसी भी काम में दो लोग होंगे तो वो काम जल्दी होगा, राइट?
हेलो। हाँ बराबर।
ભાનુબેન કઈ ગાથા છે?
આ ઉપયોગ લાસ્ટ ટાઈમ ઉપયોગ નું હતું ને, હજી 8માં શ્લોક માં ખત છેલ્લે ઉપયોગ આવતું હતું,
એટલે બીજી ઢાળ,
ત્રીજી ઢાળ, ત્રીજી ઢાળ માં આકાર, ત્રીજી ઢાળ માં 8મું પદ મિથ્યા અવિરત અરુ કષાય પરમાદ સહિત ઉપયોગા, એટલે હવે ઉપયોગ નું થોડુંક સમજાવતા હતા, પણ ઇટ લુક્સ લાઈક અનુભવ જી આપકા ડ્રોપ હો ગયા હૈ।
હેલો। યા સો अब जैसे कि एक आदमी है एंड ही कैन वॉक, ही इज वेरी फिट राइट, तो वो वॉक कर रहा है तो उसके पास चलने की शक्ति है और वो अच्छे से चलता है, रोज ही गोज एंड ही कैन रन, ही रन्स मैराथन, ही इज वेरी फिट, ठीक है। बट देन सडनली व्हाट हैपेंड कि अब उसके हाथ में हमने एक लाठी पकड़ा दी, ओके, वी हैव गिवन वन स्टिक टू हेल्प हिम रन और हेल्प हिम वॉक। Now you tell me, अब यहाँ दो लोग हो गए, स्पीड वुड डिक्रीज और इंक्रीज, और फर्स्ट टेल मी दैट वाई एट द फर्स्ट प्लेस वी वुड बी गिविंग हिम अ स्टिक, एक लकड़ी हम उसको क्यों दे रहे हैं हाथ में? फर्स्ट क्वेश्चन, वाई हैव वी गिवन हिम द स्टिक? यस, हाँ हाँ हाँ
इफ इज नॉट एबल टू वॉक तो उसकी सहाय करने के लिए हम,
करेक्ट। तो कभी भी हम किसी एक्सटर्नल चीज को लेने आ रहे हैं, दैट इज इटसेल्फ द प्रूफ कि हमारी जो शक्ति है वो कम हो गई है उसको इंडिपेंडेंटली करने की, राइट? ओके, तो चलो, लेकिन अब तो हमारे पास लाठी भी है, राइट? तो अब हम दो लोगों को दौड़ाते हैं, एक आदमी बिना लाठी वाला और एक आदमी जिसके पास स्टिक है, तो इन दोनों के लिए रेस कराएंगे तो कौन जीतेगा?
लाठी के बिना।
हाँ?
लाठी के बगैर का,
अरे क्यों, उसके पास तो कोई हेल्प भी नहीं है, सो द वन हु हैज द हेल्प ऑफ स्टिक ही शुड रन फास्ट।
नो, अदर वे अराउंड,
राइट? करेक्ट। तो देखो, सबसे पहले यदि परद्रव्य का संयोग है, दैट इज अगेन, दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि आप खुद कुछ अपनी शक्ति में कम हो गए हो, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टेकन एक्सटर्नल सपोर्ट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, एक्सटर्नल सपोर्ट के कारण आपकी शक्ति और कम ही होगी, यू कैन नॉट एक्सेल यूजिंग अ लाठी एंड यू नो रन अ मैराथन, आप नहीं कर सकते। सिमिलरली आपके पास द्रव्य कर्म और भाव कर्म है, ये सब ये प्रूफ है कि हमारे आत्मा की शक्ति संकुचित हो गई है, और आत्मा की शक्ति संकुचित है तो वो द्रव्य कर्म भाव कर्म के साथ सब कुछ एक साथ और पूरा नहीं जान सकता, वो क्रमशः जानेगा, थोड़ा थोड़ा, एकदम सिक्वेंशियली। सो यू कैन नॉट से क्या चलो इसके पास तो कर्म भी है तो ये बहुत ज्यादा तेज जानना चाहिए, इसके पास तो हेल्पिंग एंड से, नो, इट डजंट वर्क दैट वे। जब भी आप बाहर से हेल्प लोगे, पहले आप इसलिए लोगे क्योंकि शक्ति संकुचित है, और एट द सेम टाइम वो आपको आपकी पुरानी जो जितनी आपकी इंडिपेंडेंट शक्ति थी उससे ज्यादा अच्छा करने में वो नहीं कर पाएगा, राइट? तो हमारे पास हमारी आत्मा की शक्ति संकुचित हो गई थी और हमारे पास बाहर में कर्म का संयोग था। तो हम कैसा जानते थे ज्ञान और दर्शन नाम के गुण से? हम थोड़ा थोड़ा जानते थे और क्रमशः जानते थे, राइट? ठीक है, राइट? अब लेकिन इसमें एक बेसिक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, एंड दैट इज एग्जिस्टेंशियल कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, एट वन प्लेस आपका स्वभाव है जानना देखना,
बराबर, फिर से छूट गए,
इंटरनेट नो प्रॉब्लम
खबर पड़ी जैसे हमने। द्रव्य को आश्चर्य से आकाश को छूना नियत बैठना निश्चित छो यह काल
अब
इस जॉइंड अगेन प्रश्न सुनी मन में चिकाय त्रियोगा मिथ्या विनता रुक शाय परमात्मा तो पियोग
પ્રિસિડેન્ટ તમે ડીડ યુ લુક ઇન ટુ ઝૂમ આપણે એક ફેર ટ્રાયલ વી શુડ ડુ
ના એમાં કેવું છે મેં છે ને ટ્રાય કર્યો એનો ઘણા બધાને પૂછી જોયું કારણ કે મારી ટીમ પણ ત્યાં છે પણ એમાં છે ને કમ્પ્યુટરથી જોઈન કરવું પડે એમાં ડિરેક્ટ નંબર નથી એટલે મેં
હેલો
સિંહભાઈને વાત કરી
હેલો સો ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ નાઉ કે આપકે પાસ સ્વભાવ હૈ જાનને દેખને કા ઓર આપકે પાસ શક્તિ હૈ કે આપ પૂરા જાન દેખ નહીં પા રહે સબ ચાહતે હો સો ઓબ્વિયસલી વહાં પર અબ હમકો દિક્કતે આની શરૂ હોંગી આત્મા કે પાસ બહોત સારે અબ એસે કોન્ટ્રાડિક્શન્સ આયેંગે જહાં વો ચાહેગા કુછ ઓર હોયેગા કુછ ઓર राइट हेलो
हाँ
जी
और इसके कारण आत्मा के इच्छाओं की उत्पत्ति होगी समझ में आ रही है बात हमारी इच्छाओं की उत्पत्ति क्यों हुई क्योंकि मेरे को जानने और देखने की तो सर्व की इच्छा थी सब कुछ जानने की इच्छा थी और प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे पास शक्ति ही क्षीण हो गई खत्म हो गई हीन है राइट तो अब मेरा जो भी जानना है वो थोड़ा है और क्रमशः है तो अब मैं क्या करता हूँ उपयोग में अब मेरे उपयोग में, मतलब ये क्योंकि मेरी शक्ति ऐसी है ना, और इच्छा है सर्व को जानने की, तो उपयोग में चिद विवर्तन होता है। चिद विवर्त क्या होता है कि जब आप एक विषय के पास गए और आपने वहां पर थोड़ा जाना, बट तुरंत आपको जिज्ञासा, यार ये वाला भी तो जान लूं। तो जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था कि हेलो, हमने एग्जांपल लिया था कि मैं खाना खाने के लिए बैठा हूँ, सो आई हैव फिट टू ईट। तो अब मुझे सबसे पहले तो बैठने के लिए मस्त अच्छी डाइनिंग टेबल एकदम कंफर्टेबल हो जो वो चाहिए, और टेम्परेचर शुड बी गुड वहां पर, मतलब बहुत ठंड नहीं हो, हीटर्स ऑन हो, जो हमारी प्लेट आ रही है वो एकदम टच के आए, जो दिखने में एकदम सुंदर हो, डिशेज चार पांच प्रकार के तो हो एटलीस्ट, सामने टीवी चल रही हो, माइल्ड म्यूजिक चल रहा हो, और रूम में थोड़ी अच्छी स्मेल भी आ रही हो, मतलब गंदा नहीं आ रहा हो कुछ भी, राइट? सो सी, मुझे बस काम तो था रसना इंद्री के विषय से, क्योंकि भूख लगी थी, तो रसना इंद्री का भी विषय नहीं एक्चुअली, एक्चुअली तो ये भी विषय नहीं था कि मतलब खाना स्वादिष्ट हो। जैसे हमारे मुनिराज लोग जो होते हैं वो स्वादिष्ट खाने के लिए भोजन नहीं करते, वो पेट रूपी गड्ढे को भरने के लिए, क्षुधा वेदना हुई है तुरंत उसका मतलब जो जैसा मिल गया, रूखा सूखा जितना जिसने जैसा दे दिया वैसा आहार लेके भूख मिटने पर शांत होते हैं, राइट? तो काम तो रसना इंद्री के विषय का भी नहीं था, फिर भी खाने की बातें तो चलो जिह्वा तो आएगी, रसना इंद्री तो आएगी, ठीक है, बट अकेली रसना इंद्री के एक विषय के लिए हमारी सर्व को जानने की इच्छा ने पांचों इंद्रियों के विषयों को आमंत्रण दिया, राइट? और उसमें भी अब लेकिन उपयोग की तो सीमा है, अब या तो वो रस को चखेगा, या फिर सामने टीवी को देखेगा, या फिर सामने जब आप बैठे हो तो आसपास के रूम को देखेगा चक्षु इंद्री के विषय में, या फिर म्यूजिक को सुनेगा, यानी कि उपयोग की शक्ति तो क्या है कि वो या तो इस जगह जाएगा या उस जगह, और इच्छा क्या है कि मैं पांचों को एक साथ भोग लूं, राइट? इच्छा है कि मैं पांचों को एक साथ भोग लूं, और शक्ति है कि हम तो विकलांग हैं एकदम, वी आर हैंडीकैप्ड, आई कैन नॉट जस्ट रन, मुझे एक के बाद एक के पास ही जा पाऊंगा, राइट? तो इस कारण अब उपयोग जाएगा और वो छलांग मारेगा बंदर जैसे, वो पहले स्पर्शन इंद्री के पास जाएगा, फिर उसको नहीं 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 रसना इंद्री भी है तो उसके पास जाएगा, तो अरे टीवी में क्या आ रहा है, नहीं नहीं वॉल्यूम बढ़ाओ, ओके अरे हीटर्स ऑन क्यों ऐसे किए हुए हैं, और थोड़ा हीटिंग ऑन करो, ज्यादा करो, तो इट्स ऑलवेज कॉन्स्टेंटली वो बेचैन है, रेस्टलेस है, क्यों? क्योंकि वो सबको एक साथ भोगना चाहता है और शक्ति उसके पास है नहीं एक साथ भोगने की। तो ये उपयोग के बदलने को चित विवर्त कहते हैं, और इसी के कारण ये आकुलता है, आकुलता है ये, और ये आकुलता का ही दूसरा नाम दुख है, भाव कर्म है, राग द्वेष है, ठीक है? उपयोग का काम तो सिर्फ जानने का है, राइट? जैसे कि लाठी से आप अपने पैरों से भाग रहे हो, तो पैर कोई ऐसा नहीं कि पैर गुस्सा करना शुरू करेंगे, पैर तो अपना काम करेंगे, बट उसी टाइम जो आपका मन है कि यार मैं क्यों तेज नहीं भाग पा रहा हूं, मैं ये वाली मैराथन क्यों नहीं भाग पा रहा हूं, तो अब ये जो मन झपट्टे मारेगा, रोएगा, विकल्प करेगा कि वाई एम आई नॉट एबल टू डू दिस, ये दुख है, ये मोह राग द्वेष है, ये चिद विवर्त के कारण होता है। हेलो,
हाँ बराबर, हाँ
अच्छा छुट्टी है,
हाँ अनुभव जी, कनेक्टेड तो छे, देखें जरा आवाज न तो
ये
આપણે બીજી સભાઓમાં બીજા લઈ આવે છે એવું કોઈ નથી લઈ આવી શકતું.
કોઈ છે નહીં.
હેલો, હા અવાજ આ રહી આપકો?
અભી આતી હૈ, અભી આતી હૈ, બીચ બીચ મેં આપ.
હા હા હા. તો હુઆ કે મતલબ ચિત્ત વિવર્તન ઉપયોગ કા પલટના, યે તો ઠીક હૈ. હમારી જબ સીમિત શક્તિ હૈ તો યે તો હમારા સંસાર અવસ્થા મેં સ્વભાવ યે કે હમેં દર્શન પૂર્વક જ્ઞાન હોગા, એક વિષય કે બાદ દૂસરે વિષય કા જ્ઞાન હોગા, મતિ જ્ઞાન પૂર્વક શ્રુત જ્ઞાન હોગા, યે ઠીક હૈ. બટ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ કે આપ જબ ખાના ખા રહે થે તો આપકો ટીવી કો દેખને કી ઇચ્છા ક્યું હુઈ? દેટ ઇઝ ધ બેસિક ક્વેશ્ચન. એન્ડ વો ઇસલિયે હુઈ ક્યોંકી આપ સબકો એક સાથ જાનના, એક સાથ ભોગના ચાહતે હો. એન્ડ વો આપ કર નહીં સકતે તો ઉસકે લિયે અંદર મેં આતુરતા હોતી હૈ, ઉસકે લિયે ઇચ્છા હોતી હૈ, ઉસી કા નામ રાગ હૈ, મોહ હૈ, દ્વેષ હૈ. રાઈટ? તો જાનના વો તો ઉપયોગ ગુણ કી પર્યાય હૈ, જ્ઞાન દર્શન કી પર્યાય હૈ. Correct? But at the same time, इच्छा करना, इच्छित विवर्त जिसके कारण हो रहा है, वो उसका influencer, motivator, वो मोह राग द्वेष चारित्र मोह का परिणाम है.
बराबर.
इसलिए चिद विवर्तन को मूल कारण कहा कि हम कर्म के आश्रव को क्यों करते हैं. क्योंकि स्वभाव है पूर्ण जानने देखने का, और कंट्राडिक्शन है कि पूर्ण जान देख नहीं सकता छद्मस्त अवस्था में, तो इसको सर्व को जानने की बार बार इच्छा होती है, तो एक विषय से दूसरे विषय में जाता है और आकुलित होता है. इसलिए महामुनिराज स्वरूप में ही एक जगह उपयोग लगाने का प्रयत्न करते हैं. एक जगह उपयोग है तो चित्त विवर्त नहीं हो रहा है, तो शुद्ध उपयोग होता है, आश्रव नहीं होता. इसलिए आश्रव का मूल जो प्रोसेस वाला कारण है वो चित्त विवर्त है. सी, उपयोग यानी जानने के कारण नहीं हो रहा है आश्रव, बट एक विषय से दूसरे विषय जा रहे हैं हम, तो किसी कारण से जा रहे होंगे. जब आप एक जगह से थक गए या निराश हुए तो आप दूसरी जगह गए. तो ये जो निराशा का परिणाम है, यहां से आपको सुख के लिए निराशा मिली, यू डिड नॉट गेट इट, बट आगे से आपको सुख की एक नई आशा मिली. देयर इज अ होप कि चलो यहां से आई डिसअपॉइंटेड, अब आगे मिल जाएगा कहीं. तो ये जो आशा निराशा का चक्र चलता है, दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी हैव नया नया कर्म का आश्रव. करेक्ट? ठीक है. देखो ज्ञान दर्शन की पर्याय का इसमें प्ले नहीं है. ज्ञान दर्शन तो अपने समय से दोनों एक एक समय में हो रहे हैं, बट ये जो उपयोग कल्प्रिट है, जिसको लगता है कि देखो मैं जानू तो सर्व को, और वो अपनी लिमिटेशन को रियलाइज नहीं करता, और बस एक जगह तो बैठना नहीं चाहेगा वो स्वरूप में, उसको सब जगह जानना है, और बार बार हर जगह जाकर आप लाठी लेकर रेस जीतना चाहो, दैट इज नॉट पॉसिबल. हाँ, आप उपयोग को स्वरूप में लगाओ जिससे आपकी लाठी ही चली जाए, आपको केवल ज्ञान हो जाए, वेल इन गुड. फिर आपको जहां लगाना है फिर उपयोग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. यू एट वन टाइम नो एवरीथिंग इन इट्स होल फॉर्म. ठीक है? तो इसलिए मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के पास ये जब उपयोग झपट्टे मार मार के जाता है तो उससे ही आश्रम होता है. ये इसका अर्थ है. Anybody has any question? Is there any question? चित विवर्तन से कैसे कर्म बंद होता है, सबको समझा?
हाँ, बहुत बढ़िया.
चित विवर्तन मतलब इसमें जो जानने का काम हो रहा है वो कर्म बंद का कारण नहीं है, लेकिन विषय क्यों बदला आपने, मतलब आप खुश नहीं थे पहले विषय से, और आपके खुश नहीं होना मतलब खेद का परिणाम. खेद मतलब आपको वहां पर खेद हुआ, निराश हुए मतलब आश्रव हुआ, और दूसरे पर गए मतलब वहां इच्छा है, आशा है, तो अगेन वो भी चारित्र मोह का परिणाम. तो दिस इज द प्रूफ दैट यू वेंट फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर. इट इज द प्रूफ कि आप पहले से डिससेटिस्फाइड हुए और अगले से सेटिस्फेक्शन की आपको होप है. तो वो जो बैकग्राउंड में होप एंड डिससेटिस्फेक्शन का प्रोग्राम अंदर रन कर रहा है, दैट इज द होल कार्मिक आश्रव का कारण, और उसकी प्रोसेस होती है चित विवर्तन के कारण, क्योंकि आप तो उपयोग करने वाले हो। देखो, आत्मा उपयोग को अलग अलग करता है और उसके चक्कर में इसके मोह राग द्वेष होते हैं। आप उपयोग के स्वामी हो। अब देखो, वापस बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पर भी। जब पंडित दौलत राम जी ने बोला है, वो बोला है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमास, कषाय और योग के साथ जीव का उपयोग। इंडिविजुअली मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय, योग, ये विदाउट उपयोग हो तो देखो मिथ्यात्व तो होता ही नहीं है विदाउट उपयोग, राइट? क्योंकि यदि आपका उपयोग मिथ्यात्व के साथ नहीं है तो उसको स्वरूप में होना चाहिए। मतलब ये सब ऐसे लगाकर शुद्ध उपयोग और मिथ्यात्व एक साथ नहीं हो सकते, करेक्ट? तो जब ये पांच चीजें हैं, इन पर उपयोग नहीं लगा है, मतलब उपयोग कोई अलग चीज पर लगा है जो कि आत्मा है, तो फिर ये पांचों होती भी हो, होती नहीं है, कषाय होती है वो अबुद्धि पूर्वक बस, बाकी होती नहीं है, लेकिन हो भी जाए तो भी क्योंकि आत्मा विषय नहीं बदल रहा है तो वो कोई इच्छा नहीं कर रहा है बुद्धि पूर्वक, तो फिर उसको वहां पर कोई हानि नहीं है। सी मतलब कितना पुरुषार्थ है हमको, हमको पहले गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक जाने में कितना टाइम लग जाए कुछ गारंटी नहीं, क्योंकि हमारे पास स्थिरता नहीं है। बट यदि एक बार सातवें सातिशय प्रमत्त गुण स्थान पर जीव चलता है तो विद इन 40-40 मिनट्स में वो पूरे सारे कर्मों को उखाड़ देता है, राइट? ये एक बार चित विवर्तन को बदलने का प्रसाद, ये मतलब रोकने का प्रसाद ये है कि आत्मा एक बार बस बैठकर आत्मा को ही देखता रहे तो 40 मिनट के अंदर उसने जितने हिस्से में कर्म अभी तक बनाए हैं वो सब जल के राख हो जाते हैं। मतलब ये उपयोग का बदलना कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है। यदि ये वाली गलती ना हो तो 40 मिनट में संसार खत्म हो जाए, राइट? तो ये उपयोग को हम नहीं रख पाते एक जगह, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। अब दूसरी बात, तो ठीक है, आप बोल रहे हो कि उपयोग को बदलते हैं इसलिए आश्रव होता है, तो ठीक है, हम एक विषय संबंधी ही उपयोग रखे रखेंगे तो हमको फिर ठीक रहेगा ना। कि देखो, जब तक हाथ में लाठी है आप मैराथन लड़ो या छोटे बच्चों से रेस लड़ो, आपकी शक्ति तो हीन है। यू कैन नॉट रन द वे यूज टू रन विदाउट एनी हेल्प, करेक्ट? सिमिलरली, जब तक उपयोग बाहर से सहायता ले रहा है इंद्रियों की, तब तक वो एक विषय में प्रवर्ते या अलग अलग विषयों में प्रवर्ते, डिफॉल्ट ही वहां पर वहां आत्मा की शक्ति तो संकुचित रहेगी। तो इसलिए इंद्रियों के विषयों के वशीभूत गया उपयोग, वो कभी भी भले एक ही विषय में लगाए रखो जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लिया कि लगाए रखेंगे तो भी वो आपको पूरे सुख का, ज्ञान की अनंतता का, युगपद पने का वो कभी भी आपको स्वाद नहीं दे पाएगा। तो यदि उपयोग एक जगह कहीं लगेगा तो वो सिर्फ एक जगह है, वो सिर्फ आप हो, सिर्फ आपका, आपके आत्मा में उपयोग लगेगा। आप चाहो कि मंदिर में उपयोग लग जाए इतनी देर, पंच परमेष्ठी के पास लग जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं, फैमिली में लग जाए, बच्चों में ध्यान लग जाए, नॉट पॉसिबल, काम में लग जाए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सब बाहर के इंद्रिय के विषय हैं। पराधीन प्रवृत्ति में उपयोग अंतर मुहूर्त में पलटता ही है, अंतर मुहूर्त से ज्यादा कहीं लग सकता है तो वो सिर्फ आत्मा में लग सकता है, ठीक है?
हाँ।
तो मतलब बाहर से जितनी भी हमारी सुख की आशाएं हैं, इफ आवर हैप्पीनेस इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट हैज अ टाइम ड्यूरेशन, एट मैक्स इट कैन रिमेन फॉर 40-41 मिनट्स, 42 मिनट्स, दैट्स ऑल। उसके बाद 40 मिनट तो बहुत बोल दिया, अभी हमारा उपयोग इतना खराब हो चुका है कि हम तो 5-10 मिनट भी अटेंशन नहीं दे पाते किसी बात पर, राइट? तो 40-45 मिनट तो बहुत बड़ी ड्यूरेशन होती है, क्योंकि हमारे पास उपयोग को बदलने के, अब उसको खराब करने के साधन इतने हो गए हैं,
बढ़ते जाते हैं।
हाँ, हमारे पास फोन है, टैबलेट है, टीवी में 1000 चैनल है, इंटरनेट में तो लाखों वेब एड्रेसेस हैं, यूट्यूब पर भी जाएंगे तो एक वीडियो है तो दूसरा, गुरुदेश्वरी के प्रवचन सुनने भी जाएंगे तो अभी ये वाला सुनते हैं। एक निरंतरता, एक यू नो कि एक सिस्टमेटिक, हम एट पीस एकदम शांति से कुछ काम कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल। हम इतने रेस्टलेस हो चुके हैं,
तो जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं फैसिलिटी वगैरह, साधन सामग्री, तो इतना ज्यादा उपयोग तो बाहर जाता
है। यही तो हुआ। तो फर्स्ट, यदि यहाँ से मुझे करेली से लाइक से भोपाल जाना है, तो इट वुड हैव टेकन मी लाइक 3 डेज, क्योंकि उस टाइम पर बैलगाड़ी चलती थी, तो लोग उसमें बैलों के साथ जाते थे या पैदल जाते थे, जिसके पास जो हो। तो इट वुड टेक हिम 3 डेज, तो आराम से जाते थे, सफर करते जाते थे, सब देख के जाते थे, प्रॉपर रास्ते में खाना भी बनाते थे लोग, ये सब करते थे। एंड देन दे थॉट कि कितना अच्छा होगा, हमारा कितना टाइम बचेगा, समय बचेगा, कि हम जल्दी से यहाँ से भोपाल जा पाएंगे। सो नाउ टुडे यू कैन टेक अ ट्रेन, यू कैन रीच देयर इन 4 आवर्स, यू कैन टेक अ कार एंड यू कैन रीच इन 5 आवर्स, राइट? तो पहले वो 3 दिनों का समय हमने 5 घंटे में खत्म कर दिया, राइट? बट द प्रॉब्लम इज नाउ कि वो 3 दिन में हम जाते थे तो हमारे पास एक ही काम होता था कि चलो भी 3 दिन में पहले भोपाल पहुंचना है, हैव टू रीच। बट नाउ सिंस वी हैव सेव्ड टाइम, तो नाउ उस टाइम को बचाने की आकुलता में अब हम एक जगह जाते हैं और वहां के 50 काम हो गए हमारे पास, तो वी आर बिजियर देन यू नो एवर। अब हम पहले जितने कभी बिजी नहीं थे, हम उतने ज्यादा बिजी हो गए। तो पहले आप वेकेशन पे जाते थे तो ये करना है हमको, तो आराम से होता था सब। बट नाउ नाउ यू हैव लाइक, अब इतने में इतना हो जाएगा, इतने में इतना हो जाएगा, इतने में इतना हो जाएगा। सो द मोर वी हैव ट्राइड टू सेव टाइम, द मोर वर्क वी हैव गैदर्ड, हमारे पास और काम आ गया उतने समय में कर लेने के लिए। खाली समय तो बचा ही नहीं, हमने सोचा था इससे हमारा समय बचेगा, बट नो, हमने उसमें और काम फिल इन कर दिया। सो वी आर नाउ मोर बिजी, जबकि समय बचा था तो हमको थोड़ा फ्री होना चाहिए था। ऐसे ही है, क्योंकि हमारे सुख के उपाय उल्टे हैं, वो जो चित विवर्तन रुकेगा वो स्वरूप में आने से रुकेगा, लेकिन वो रुकता नहीं है क्योंकि हम स्वरूप में आते नहीं है, और बाहर रहते तो इच्छाओं का पार होगा नहीं कभी, और इस चित विवर्तन से कर्माश्रव चलता ही रहेगा। ठीक है, जानने से बंद नहीं है, आई एम टाइम एंड अगेन रिपीटिंग, जानने से बंद नहीं है, जानने की इच्छा है तो बंद है। भोगने से, भोगने की जो इच्छा आ रही है, राइट, वो बंद है। और हमारा मेन काम इज जानना, उपयोग इज अवर वर्क। अब वो जानने के साथ मोहिनी, चारित्र मोहिनी कर्म की पर्याय इतनी ज्यादा मिली हुई हमको लगती है कि मुझे लगता है कि मैंने क्रोध कर दिया, मैंने कषाय कर दी, बट द रियलिटी इज कि नो, क्रोध और कषाय मैंने नहीं करे हैं, मैंने क्रोध और कषाय को जाना है, मेरा उपयोग मिथ्यात्व के पास गया है, अविरति के पास गया है, प्रमाद के पास गया है, कषाय के पास गया है। मुझे कषाय को खत्म करने में कुछ नहीं करना है, मुझे कषाय से अपना उपयोग समेट लू, तो जब मैं सामने वाले के पास जाऊंगा ही नहीं तो उस पर क्रोध कैसे करूंगा। तो कितना सरल उपाय है, टू फिनिश ऑफ आपका क्रोध मान माया लोभ। आपको क्रोध मान माया लोभ की पर्याय की चिंता ही नहीं करनी कि नहीं चारित्र मोह का कर्म होगा, अनंतानुबंधी क्रोध का कर्म होगा तो क्रोध कैसे नहीं आएगा, फॉरगेट अबाउट इट। आप उस क्रोध के पास अपना ध्यान मत लेके जाओ, इग्नोर इट, द मोमेंट यू इग्नोर इट, इट विल गो। तो आपको जितना पुरुषार्थ करना है वो उपयोग में करना है, बिकॉज उपयोग यू कैन ओनली ड्राइव योर उपयोग. हमको भ्रम हो जाता है कि मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ. नो, आप उसमें बस अपना अटेंशन दे रहे हो, राइट? जस्ट टेल मी वन थिंग, ड्रीव करते हैं हम तो क्यों बोलते कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव?
क्या
जब कोई भी कार ड्राइव करता है तो क्यों बोलते कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब डोंट? हाँ, क्या प्रॉब्लम है उसमें? करेक्ट, आपका उपयोग नहीं रहता. सो व्हाइल ड्राइविंग, वो तो देखो कई बार तो लोग ड्रिंक में भी ड्राइव कर लेते हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं? दैट इज द प्रूफ कि भाई साहब उपयोग से ही कार चलती हो, ऐसा नहीं है. हाथ पैर उसके इतने अभ्यास में आ गए हैं, इट्स सो मेथडोलॉजिकल कि नाउ अब वो बिना देखे भी इधर उधर चलाते तो उसकी स्टीयरिंग पर अपने आप हाथ घूमता है, उसके पैर अपने आप काम करते कि एक्सेलरेटर अब चलना है, क्लच को अब करना है, ब्रेक को अब आना है. करेक्ट, हमारे ब्रेन इज ऑल ट्रेन्ड. बट द प्रॉब्लम इज कि मेन ड्राइवर सीट इज नॉट आपके हाथ या आपके पैर या आपकी आंखें. द मेन ड्राइवर इज योर उपयोग. आप उपयोग को चलाते हो, कार को नहीं चलाते. कार को तो बॉडी के बाकी के पार्ट्स चला रहे हैं. और डीप में जाते हैं, आपको सबको पूजन तो याद होगी, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंदर, राइट? हम लोग मंदिर में गए, हम लोगों ने रूटीन पूजन स्टार्ट करी. तो सी, अब आप इधर उधर अपनी थाली भी जमाते जाते हो और आपके मुंह से पूजा पीठिका भी हो गई. केवल रवि सब पूजा स्टार्ट हो गई एंड अपने आप जब आप अर्घ बोल रहे हो तो अपने आप हाथ चला गया, उसने अक्षत निकाला और उसने पूजन की थाली में डाल दिया, राइट? सी, सो मेनी वर्क्स आर हैपनिंग. मुंह से आपकी पूजन चल रही है, हाथ से आपकी पूजा की थाली आप सब चला रहे हो, अर्घ आने पर आप बिल्कुल जैसे ही अर्घ आता है वैसे ही आपका हाथ यहाँ से जाके यहाँ पर चला जाता है. यू डू नॉट हैव टू थिंक, इट इज सो, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में इतने अंदर तक आ चुका है कि आप घर के बारे में सोच लेते हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर लेते हो कि हु इज बियरिंग वॉट, हु इज आया, कौन नहीं आया, एंड आपकी पूजा ब्रेक नहीं होती. इट इज द प्रूफ कि पूजा बोलना ये आपकी क्रिया है ही नहीं, तभी वो ऑटो मोड पे चल रही, ऑटो पायलट मोड पर. हाथ से अर्घ चढ़ाना, दिस इज ऑल्सो नॉट योर क्रिया. वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग इज पूजन आपकी उतनी ही हो रही है, भले ही आपने पूजा पूरी पड़ी है. आपको पूजा सिर्फ उतनी होगी जितना आपका उपयोग पूजन के शब्दों में चाहेगा, बाकी उतने टाइम पर बाकी जितने विचार चल रहे हैं उस संबंधी ही आश्रव हो रहा है. पूजा संबंधी कोई आश्रव नहीं हो रहा, क्योंकि जड़ की, मतलब जड़ की क्रिया की वैल्यू इज जीरो. क्रिया से कोई बंध नहीं है, जो उसके साथ एक तो संस्कार रूप परिणाम है और अंदर का मूल छिपा हुआ अभिप्राय है. दैट इज द मूल रीजन, मेन रीजन. आपका जो उपयोग जहां जहां है वहां वहां वो बंध के दायरे में आएगा.
नहीं, एकदम सो ट्रू, क्योंकि कई दफा वो पूजा वगैरह आपने बोला बोल जाते हैं और उपयोग
हाँ, फिर याद आता है अरे यार आज तो अच्छे से पूजन ही नहीं हुई, तो फिर आप दोबारा पढ़ते हो एक बार कि नहीं, इस बार वापस पढ़ते हैं
दोबारा
वो वाली लाइन को वापस पढ़ते हो कि नहीं, वाली लाइन में क्या हो गया, तो अरे वो वाली पढ़ी तो थी अभी, क्यों दोबारा पढ़ना है? क्योंकि वहां पर जो मेन ड्राइवर है, जो आप हो, वो उपयोग है, वो ही वहां से गायब था, वो कहीं और चला गया था. एंड देट उपयोग इज ओनली रियलाइज नाउ कि यार मैं नहीं सुन पाया, तो उपयोग बोलता है भैया वापस पढ़ो, मैंने नहीं सुना. देन यू गेट दैट उपयोग बैक एंड देन यू रीड इट एंड देन आपके परिणाम थोड़े बहुत संभलते हैं. तो ये हमारा काम सिर्फ है उपयोग का, दैट्स द ओनली थिंग वी नो टू डू. बट उस उपयोग में लिमिटेशन इतनी आ गई क्योंकि स्वभाव है सर्व को जानने का, सर्व को देखने का, तो इच्छा अलग होगी और ये उपयोग बहुत फ्लिकरिंग है, बहुत जल्दी भटक जाता है और हमने इसको अपने संयम से नियंत्रित नहीं किया है, मन को वश में नहीं किया है, राइट? तो ये उपयोग इधर उधर भागता ही है एंड द प्रॉब्लम्स अकर और वो आश्रव बन स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो कषाय को दूर नहीं करना है, मिथ्यात्व को दूर नहीं करना है, योग को वश में नहीं करना है, इन सब में जो आप इतना अटेंशन देते थे, इन सब को हम जो इतना भाव देते थे, राइट, वो हमको दूर करके अपने बारे में सोचना है। इफ वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अवर सेल्फ, खत्म हो जाएगी बात। इसलिए बार बार आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, राइट। ओम श्री सदगुरु परमात्मा ने नमः, ओम श्री सर्वज्ञ देव सदगुरु परमात्मा ने नमः, ये सब क्या है? ये छोटे छोटे मंत्र हैं, भावनाएं हैं, उपयोग को नियंत्रित करने के लिए। तो आप इनको बोल के आप अपने स्वरूप की भावना भाते हो। हम स्तुति पढ़ते हैं, हम ये सब पढ़ते हैं, ये क्या है? हम अपने उपयोग को बाहर के पांच इंद्री के विषयों से बांध कर स्वरूप में लेके आना चाहते हैं। ये उसके उपाय है। ठीक है
अनुभव जी, एक्चुअली वो जस्ट मैं तो अपना ही शेयर करती हूँ, जो अगर क्वाइटली माइंड में बोले तो उपयोग ज्यादा भाग जाता है, और लाउडली बोले तो वैसे वहाँ जैसे आपने बोला कि कोई वैसे मंत्र के बारे के तो उपयोग वहाँ ज्यादा टिकता है।
तो सी इसका शतखंडागम में बहुत अच्छा प्रयोग आया है। तो ये मतलब एक क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन हुआ कि आप हम लोगों से देखो भगवान को चढ़वा रहे हो, चावल चढ़ाओ भगवान को अर्पण करो, बट द रियलिटी इज के भगवान के पास ना तो वो पहुंचने हैं, ना भगवान को उनसे कुछ लेना देना है, ना भगवान को कुछ फील गुड होगा कि चलो भाई चढ़ावा आ गया आज, भगवान को कोई मतलब नहीं। सो जब भगवान को कुछ लेना देना नहीं तो हम ये सब क्यों करते हैं? Isn't it totally unnecessary in wastage of resources? Right? हम इससे अच्छा है कि हम चावल किसी गरीब को दे देते हैं, एटलीस्ट ही यू नो फीड हिज हंगर। क्या है हम ये क्या कर रहे हैं मतलब? सो नाउ दिस इज नॉट अ रिचुअल और एनीथिंग। उत्तर ये आता है कि ये जितने भी हम क्रिया कांड या विधान वगैरह ये जो रचाते हैं ना, जो प्रोसेसेस जोड़ देते हैं, जैसे कि मुझे 108 बार नाम लेना है तो आपने मेरे हाथ में माला थमा दी, राइट, आई हैव टू नाउ काउंट द बीट्स। ये जितने भी हैं दीज आर नथिंग बट द क्या बोले कुछ चाल बोल सकते हैं हम, एक उपयोग को फंसाने के लिए। वो इतना उलझ जाए इधर परी के बाहर का सोच ही नहीं पाए। तो पहले बोलते हैं कि आप मन में मत पढ़ो, आप तेज बोलो, आप बोल कर पढ़ो, वचन से पढ़ो, वचन हाँ। से भी ज्यादा तेज नहीं पढ़ो, ज्यादा स्लो नहीं पढ़ो। फिर वचन से पढ़ने के बाद सामने द्रव्य की थाली भी रखो, और द्रव्य की थाली में भी हर एक चार लाइन के बाद आपको कुछ चढ़ाना है, राइट। तो देखो उपयोग का नेचर है कि वो छलांग मारेगा, राइट तो आप अब ऐसा है कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दो। देखो छलांग तो वो बाहर मारेगा यहाँ से वहां, सुनाओ आप क्या करो, इसको चार पांच एरियाज बता दो छलांग मारने के, ये यहाँ से मारेगा यहाँ पर, यहाँ से मारेगा यहाँ पर, सो दैट उपयोग के पास तो हजार जगह जाने के लिए, राइट। उपयोग हैज 100 प्लेसेस टू गो, बट आपने चार प्लेसेस उसको पहले प्री डिफाइन करके आपने पहले उसको इतना तो पक्का कर लिया कि चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू दीज फोर प्लेसेस इज नाउ मोर देन अदर प्लेसेस, करेक्ट। तो वो उपयोग भले पूरे टाइम वहां नहीं रहे, बट नाउ पांच में से चार बार तो वो वहीं पर रहेगा, एक बार बाहर चला जाए तो चला जाए, बट ठीक है, दैट्स नॉट बैड। अकेली आपके पास सिर्फ आप होते और आपके पास एक स्तुति होती आपके मन में, तो बस आपका उपयोग आपकी स्तुति के पास जाता, सामने भगवान को देखता और फिर गायब हो जाता कहीं और, फिर स्तुति के पास आता, फिर भगवान को देखता, फिर और कहीं गायब हो जाता। सो नाउ इट हैज लाइक स्तुति, अब वो स्तुति के पास जा रहा है बुक में, वो सामने थाली में देख रहा है कि क्या करना है, या फिर वो माला में देख रहा है कि अच्छा ये वाला नंबर का मोती है, और या फिर वो भगवान की प्रतिमा पे देख रहा है, भगवान की एक नहीं 10-10 प्रतिमाएं हैं सामने, तो वो देख रहा है पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा उनकी स्तुति चल रही है तो उनको देख रहा है, महावीर भगवान कर रहा है तो उनको देख रहा है। सो दीज आर नथिंग बट द ट्रैप कि हम उपयोग को जितना ज्यादा उलझा कर रखें क्योंकि वो जाएगा तो बाहर, यू कैन नॉट हेल्प इट, यू जस्ट कैन नॉट हेल्प इट। तो एक गुड के हम उसके इतने एवेन्यूज खड़े कर दें कि वो जाए तो वो ऐसी जगह जाए जो कि सेफ है, जो कि अच्छी है। इसके लिए सारी चीजें उसको उलझाने के लिए की जाती है। ऐसी शक्तिनागम में तो उदाहरण आता है कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं हम, तो जैसे पहले किसी ने नमोकार मंत्र पढ़ा तो उसने नया नया पढ़ा तो उसका मन बहुत लगेगा, नमो अरिहंताय नमो सुधारय, क्योंकि उसको पांचों परमेश्वर के स्वरूप का विचार कर रहा है, नया नया पढ़ा उसको अच्छे से याद भी नहीं है, तो ही विल स्पीक इट विद ड्यू अटेंशन। बट थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको इतना अभ्यस्त हो जाएगा कि वो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ भी लेगा स्वाध्याय के बाद, और उसने एक बार भी अरहंत के स्वरूप का विचार भी नहीं किया होगा, उसको 5 परमेश्वर के नाम भी याद नहीं आए होंगे, वो कहीं और ही सोच रहा होगा कुछ और ही, आगे क्या करना है, इसके बाद क्या बोलना है, अभी क्या करेंगे, दैट्स द ओनली थिंग। तो वहां पर बोला कि ऐसा मत करो, एक बार जिस चीज का अभ्यास हो जाता है फिर उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो शक्तिनागम ने बोला अब क्या करो, अब उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ो, ओम नमो लोए सप्तसाहूणम नमो वज्रयाणम नमो ऐरियाणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम। अब आज का 9 बार नमोकार मंत्र उल्टा पढ़ो तो अब वापस उपयोग लगेगा, क्योंकि ना उपयोग के पास कुछ नई चीज हो लगने के लिए, इट लाइक न्यू थिंग, जैसे ये यूज टू हो जाता है किसी चीज के वो बोर हो जाता है, राइट। तो फिर जब ये भी हो गया तो थोड़ी टाइम बाद इसमें भी आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो फिर तीसरा वाला बोला जो कि वेरी 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 मतलब इसमें तो उपयोग पागल हो जाएगा, इट्स वेरी मैथमेटिकल। तो उसमें फिर बोला तीसरा वाला होता है रेंडम, कि अब आगे से हो गया पूरा सिक्वेंशियली, एक टीचर से सिक्वेंशियली हो गया, अब रेंडम करो। तो आपको नमोकार मंत्र बोलना है कोई सा भी पद, एंड 5 में से कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो नमो लोए सव्यसाहूणम नमो आयरियाणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वज्रयाणम नमो वज्रयाणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम नमो लोए सव्यसाहूणम नमो आयरियाणम, ऐसे करके नाउ आपको हमेशा रेंडम पिक करना है। तो नाउ यू हैव टू थिंक, जब आप एक बोल रहे हो तो आपका ब्रेन ये काउंट कर रहे कि अच्छा ये वाला हो गया, कौन सा आएगा अगला, फिर अगला हो गया तो वो बोलेगा अरे रिपीट नहीं होना चाहिए पिछला वाला, तो नाउ वो बहुत उलझा हुआ है। सो आपका उपयोग विशेष लगेगा, अभी मेथोडोलॉजी बताई गई है,
ज्यादा कंसंट्रेशन करना ही पड़ेगा ना, तो एक
हाँ हाँ। और श्रीमद राजचंद जी ने वो एक सबसे पहले किताब लिखी थी ना बच्चों के लिए, जो क्या नाम है उसका, श्रीमद राजचंद जी ने 16 वर्ष मोक्ष, हाँ मोक्ष, क्या नाम है, मोक्ष
मोक्ष माला,
हाँ मोक्ष माला, उसमें ये वाला पाठ दिया हुआ है माला वाला, और जब अपन वो करते हैं ना तो उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप अपने उपयोग को लगा सकते हो। उसमें उन्होंने मैसेज डिस्कस करी है, उसका आई थिंक 30th इसी सीरीज में, 20 की सीरीज में कोई चैप्टर है, तो उसमें ये किया हुआ है सामायिक के बाद कुछ प्रकरण है, बहुत गजब का लिखा उन्होंने, मतलब उस वर्ष की उतनी छोटी उम्र में उन्होंने जो मोक्षमाला लिखी है, आपको पता है बहु पुण्य पुंज प्रसंग से ये उस मोक्षमाला का एक चैप्टर है, वो मतलब अलग ही चीज है। बट उसमें थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम पर वो श्वेतांबर भी थे, मतलब उनकी मम्मी थे, तो इतना उसमें थोड़ा कुछ कुछ पुट भी है, बट अमेजिंग इट इज। तो वो वाली जो कहानियां जो उन्होंने यूज करी है वो श्वेतांबर के लिटरेचर से प्रभावित है, जो उन्होंने 12 भावनाओं में भी कहानियां ली है, बट सिद्धांत विरोधी कोई बात नहीं है उसमें। तो उसमें भी उन्होंने ये वाली मेथड डिस्कस करी है कि कैसे हम अपने उपयोग को लगा सकते हैं, जितना उसको अच्छे विषयों में, इसलिए बोलते हैं कि भगवान की भक्ति में चित्त लगाओ, स्वाध्याय में चित्त लगाओ, इन चीजों से अपने आप को घेरे रखो, या तो सत्संगति करो तो वो अच्छी अच्छी चीजें ही बताएगा, इससे हमारा उपयोग निर्मल रहेगा, वो योग्य स्थानों में ही जाएगा और व्यर्थ के क्रोध मान माया लोभ ऐसे किसी विकल्प को नहीं करेगा। एनी क्वेश्चन? ये हमारा आश्रम का एक कंक्लूडिंग वाली बात अब अगली 2 लाइनों में पंडित दौलत राम जी करने वाले हैं। तो हम उसको पढ़ लेते हैं आज, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में उस पर स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। अब आश्रफ क्या का वो उपदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंध विधि तो सो बंधन का बहुना सजिए। देखो अब आश्रफ को क्या बोला था, यो अजीब अब आश्रफ सुनिए, मनवच खाए प्रियोगा मिथ्या अविरति अरुपषाय परमाद सहित उपयोगा। इन पांचों में गया हुआ उपयोग ये आश्रव है, और अब ये बोल रहे कि ये जो आश्रव है ना सिर्फ ये ही आत्मा को दुख कारण है। देखो हमें भी बहुत सूक्ष्मता से देखें तो बंध भी आत्मा को दुख कारण नहीं है, क्योंकि बंध तो रिजल्ट है आश्रव का। आश्रव इज द मेन कॉज, आश्रव नहीं होता तो बंध क्या होता। कर्म आते ही नहीं तो रुकते क्या। तो ये ही आत्म को दुख कारण, ये जो मिथ्यात्व अविरति कषाय योग के परिणाम में गया हुआ उपयोग है, ये अपने स्वरूप से बाहर भटका हुआ भ्रमित हुआ उपयोग ही, अपने स्वरूप से भ्रष्ट उपयोग ही आत्म को दुख का कारण है। अब क्रोध मान माया लोक को बुरा मत बोलो, मिथ्यात्व को बुरा मत बोलो, योगों की वक्रता को बुरा मत बोलो, वो तो थे बुरे, रास्ते में तो बहुत मैल पड़ा था, बहुत गंदगी थी, वो तो था ही बुरा, रास्ते को क्यों दोष दे रहे हो, आप उस रास्ते से क्यों गए आप बताइए मुझे, गलती आपकी है, रास्ता नहीं बुला रहा था आपको, इट वॉज योर मिस्टेक। वो आदमी तो था ही खराब, उसका तो उसको तो गुस्सा आता ही था, बट वाई डिड यू गो एंड मीट दैट पर्सन। ऐसे ही मिथ्यात्व क्रोध मान ये तो परिणति में हो रहे थे, होने देते, आप अपने उपयोग को वहां क्यों लेके गए। तो ये जो अपने स्वरूप से भ्रष्ट हुआ उपयोग है, जो विभावों के पास जाता है और उतना जाता ही नहीं उसमें एकता भी कर लेता है कि अरे ये मैंने ही क्रोध किया, मैंने यहाँ पर हास्य का परिणाम, काम का परिणाम, माया का परिणाम ये मैंने किया। ये जो हम भेद को भूलकर एक दूसरे को मिला देते हैं, ज्ञान और राग को मिला देते हैं, यही आत्मा को दुख का कारण है। इसलिए इनको तजो, कैसे तजो के उपयोग को उन तक लेकर ही मत जाओ। तजना मतलब उनको छोड़ के आना है, उनको आगे लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका उपयोग वहां लेके जाते थे, इस गंदे रास्ते से निकलते थे, मत निकलो तो इस रास्ते का त्याग हो जाएगा। उस आदमी के पास जाते थे, मत जाओ, उस आदमी का त्याग हो जाएगा। ऐसे क्रोध मान माया लोभ की राग परिणति के पास जाते थे तो अब मत जाओ, होने दो उसको। आप स्वरूप की भावना करो, स्वरूप में प्रतिष्ठा पाने का पुरुषार्थ करो, और जब ये हो जाए तो बैठ जाओ स्वरूप में, बाहर जाओ ही मत। तो नहीं जाओगे तो आपको जो ये आत्मा को दुख के कारण है ये खत्म हो जाएंगे और आप अपने आप सुखी हो जाओगे, राइट। देखना इन होल स्टोरी, आश्रव कह रहे हैं मिथ्या तो प्रमाद कषाय को, लेकिन कल्प्रिक है इनके पास गया उपयोग। सी आग तो गर्म है, हम बच्चे को डांटेंगे कि तुम आग के पास क्यों गए, हम आपको थोड़ी डांटेंगे। वाई डिड यू गो टू टच फायर ऐसी। अरे मिथ्यात्व तो कोई अच्छी चीज है क्या, मतलब मिथ्यात्व तो हो गई खराब, उसको खराब क्या कहना, मल को खराब क्या कहना, वो तो मल ही है ना। मतलब ये होता कि वैरायटी होती मिथ्यात्व की, अच्छा वाला मिथ्यात्व, बेकार वाला मिथ्यात्व, तो हम डिस्टिंक्शन करते हैं, स्पेसिफाई करते। अरे जब उसका नाम ही मिथ्यात्व है, उसका नाम ही कषाय है, तो हम उसको बुरा क्यों बोले, वो तो है ही बुरा, बोलने की जरूरत क्या है। बट वाई डिड यू गो, आप क्यों गए वहां पर। कोई पूरी कहानी आकर अटक जाती उपयोग पर, तो उससे बोलते कि भैया देखो ये सब आत्मा को दुख के कारण है, तुम इनके पास क्यों जाते हो। उपयोग का इनके पास जाना, वह उपयोग का सुसाइडल
अपना सुसाइड करना, सुख की हत्या करने वाला कदम हो सकता है। जानते हुए भी कि दुख रूप है, क्यों गए आप? हमें क्रोध पे तो गुस्सा आता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, अरे बट एक बार ये तो देखो कि गुस्से के पास नहीं जाओ तो गुस्से की ताकत नहीं कि आपको गुस्सा दिला दे। वो कोई क्रोध नाम का ऐसा कर्म नहीं हुआ जो आत्मा को गुस्सा कर पाए, अंटिल आत्मा का उपयोग उसके समीप जाएगा। सो लाइक जैसे कि यदि मुझे आपकी इंसल्ट करनी है, आई कैन नॉट इंसल्ट यू अंटिल यू टेक इट एज एन इंसल्ट। ये इट्स अ टू वे प्रोसेस, मैं अकेली किसी को गुस्सा नहीं कर सकता, वो यदि गुस्सा नहीं होता है तो मैं गुस्सा नहीं कर पाऊंगा उसको।
बराबर है।
तो आपको यदि डर है कि आई विल यू नो डिसरिस्पेक्ट यू, सो फर्स्ट थिंग इज दैट इफ यू नॉट टेक इट एज अ डिसरिस्पेक्ट, नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कुछ बोल दिया, मुझे बुरा लग गया, बट उसी टाइम में रोज यहाँ से गुजरता था, मैं एक पागल आदमी था, वो सबके रास्ते में सब लोगों से बुरा बोलता है, तो उसने मुझे बुरा बोला, तो दोस्त ने बोला तो मुझे बुरा लगा, पागल ने बोला मुझे बुरा नहीं लगा। वाई? ये बोले तो इंसल्ट है, वो बोले तो इंसल्ट नहीं, कि मुझे पता है कि यार वो मुझसे नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट इन हिज गुड स्टेट। सिमिलरली यदि मैं जो कुछ भी मुझे कर्म के उदय देते हैं, मैं मान लू कि यार ये क्रोध मुझ पे कर ही नहीं रहा है, मैं आत्मा हूँ, जो मैं हूँ वो इसको जानता ही नहीं है, देख ही नहीं सकता, और जो मैं नहीं हूँ उसको वो कुछ भी बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो when we stop paying attention to these things, हम अपने उपयोग की रक्षा करने लगेंगे तो ये सारे सारे दुख के कारण खत्म हो जाएंगे और हम अपने आप को मोक्ष मार्ग में पाएंगे। इसलिए यही आत्म को दुख कारण चाहते हैं, इनको तजिए तजिए, मतलब इनसे उपयोग अपने के लिए आओ, नहीं तो आप इनको आपको दोष देने का आपके पास कोई रीजन नहीं है। इट वॉज योर मिस्टेक, आप क्यों गए, आग तो गर्म थी, आपने क्यों छुई, मत छूते, आग थोड़ी आके आपके पास आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे पंडित दौलत राम जी ने आश्रम की चर्चा करी। अब हम नेक्स्ट क्लास के बंध की चर्चा स्टार्ट करेंगे, तो चार प्रकार के बंध है, उसकी थोड़ी डिटेलिंग करके फिर हम संभव चर्चा की बात करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वैसे तो हैप्पी न्यू ईयर बना रही है आज दुनिया, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, बट प्रति समय हमारे पास नया आश्रव है, नया संसार खड़ा हो रहा है, तो मतलब आत्मा का तो हर समय ही न्यू ईयर ही चल रहा है संसार में, तो मे बी हम मिथ्यात् का भाव करके कुछ मोक्ष के मार्ग का न्यू ईयर मनाए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इस प्रकार के जो भी सेलिब्रेशन होते हैं हम जो करते हैं, यदि वो आज चतुर्दशी है वैसे, राइट, ये 43 पर्व है,
हमारे कल है,
हाँ आप लोग की कल होगी, हाँ हमारे आज है, हाँ, तो क्या होता है जो पर्व इंद्रियों के विषयों को मनाने वाले होते हैं, संसारिक होते हैं, उनको मनाना वो रौद्र ध्यान होता है, और रौद्र ध्यान नरक गति के दिन का कार्य है, बराबर। और सत्पाद सूत्र में यदि हम पढ़ें तो ऐसे उत्सवों को मनाना जो इंद्रियों के विषयों को पुष्ट करते हैं उससे असाता वेदनीय बनती है। हम तो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, बट हो रहा है कि हमारे उल्टे असाता का, मतलब सेलिब्रेशन जिससे बंद हो, ऐसे कर्मों का बंद होता है। तो धर्मात्मा जीवों के लिए तो तीर्थंकर आदि के पंच कल्याणक की तिथियां हैं, हमारे शाश्वत पर्व है अश्विनी चतुर्दशी अष्टमी का रिफ्लेक्शन पर्व, और जो हमारे तात्कालिक पर्व है जैसे रक्षाबंधन हुआ, किसी शास्त्रो मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ, भगवान महावीर का ज्ञान कल्याणक हुआ, या उनके आहार का दिन हुआ, ये वाले पर्व, वीर शासन जयंती की दिव्य भूमि के लिए स्टार्ट की, ये सारे पर्व चूंकि हमारे वैराग्य में और हमारे तत्व ज्ञान में और हमारे जीवन को उज्जवल बनाने में निमित्त बनते हैं, इसलिए इन पर्वों को मनाने से भी आश्रव तो होगा, क्योंकि मोहराग द्वेष के ही परिणाम होंगे, राग द्वेष के परिणाम होंगे, प्रशस्त राज का परिणाम होगा स्पेसिफिकली, तो ये तो होगा, बट ये वाला जो परिणाम है ये हमको अच्छे निमित्तों के करीब देखना है, और बाकी संसारिक कोई भी होगा, इवन इट्स अ बर्थडे, न्यू ईयर और दिवाली तो जाने देते हैं, मतलब जो संसार वाले, इवन इफ इट्स अ बर्थडे, तो जन्मदिन मनाना इट्स अगेन, इसमें जो कर्म बनते हैं वो बहुत बुरे बनते हैं, तो वी शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम एकदम रिजिड हो जाए कि क्या है आप लोग न्यू ईयर क्यों कर रहे हो, कोई कर रहा है तो इट्स गुड, बट एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट, वी आर ओनली लूजिंग टाइम, हम मनुष्य बहुत सही टाइम खत्म कर रहे हैं, तो हम रौद्र परिणाम नहीं करें, कोई दूसरा करता है तो कोई बात नहीं, हम उसको ज्यादा ही बोलेंगे जो उनको बुरा लगेगा, एंड वी वुड बी लाइक यू नो कि कुछ क्या बोल रहे हो आप, सेलिब्रेट भी नहीं करने देना चाहते, सो दैट्स कॉल्ड इफ समबडी सेलिब्रेटिंग, क्योंकि सबको सुख तो चाहिए कहीं ना कहीं से तो पाएंगे वो, बट वी शुड नो दैट इट्स रौद्र ध्यान, और हम सब ऐसे दिनों में और तत्व ज्ञान से प्रेरणा लेके और तत्व विचार में लगे, that would be good for us. ठीक है, अब हम दिवाली की स्थिति करते हैं, जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवानी मस्तकियों में सदा चित्त जीते।